एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो ऊपर से देखने में शायद बहुत आम लगे, पर अपने अंदर इंसान के मन का एक बहुत गहरा संघर्ष छुपाए हुए है।
हाँ, हम बात कर रहे हैं रिचर्ड फोर्ड के 1986 के उपन्यास द स्पोर्ट्स राइटर की।
और रिचर्ड फोर्ड का जो लिखने का तरीका है उसे डर्टी रियलिज्म कहा जाता है।
बिल्कुल, और इसका मतलब ये नहीं कि कहानी गंदी है, बल्कि ये कि वो जिंदगी को जैसी है वैसी ही दिखाते हैं, बिना किसी बनावट के।
कोई बड़े बड़े फलसफे नहीं, बस आम लोगों की रोज की उलझने, उनके अंदर का खालीपन।
हाँ, और ये कहानी 1980 के दशक के अमेरिका में सेट है, वो दौर जब बाहर से तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था, बड़े घर, गाड़ियां,
लेकिन अंदर ही अंदर एक तरह का मोहभंग था।
सही कहा। और इसी माहौल में हम मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र से, फ्रैंक बास्कॉम्ब।
कौन है ये फ्रैंक बास्कॉम्ब और इसकी कहानी क्या है?
फ्रैंक एक 38 साल का आदमी है जिसकी दुनिया कह सकते हैं एक तरह से बिखर चुकी है।
बिखर चुकी है, कैसे?
कुछ साल पहले उसके 9 साल के बेटे रैल्फ की मौत हो गई थी, एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी, रे सिंड्रोम से।
ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है।
हाँ, और इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उसकी पत्नी से तलाक हो गया।
जिसे वो पूरे उपन्यास में सिर्फ एक्स कहकर बुलाता
हाँ,
है।
जैसे वो अतीत का कोई ऐसा हिस्सा हो जिसका वो नाम भी नहीं लेना चाहता।
और इस सदमे के बाद वो अपना करियर भी बदल लेता है ना? वो तो एक लेखक था।
जी, वो कहानियां लिखता था, पर सब छोड़कर वो एक स्पोर्ट्स राइटर बन जाता है, मतलब खेल पत्रकार।
ये बहुत अजीब है। एक आदमी जो भावनाओं और शब्दों की गहराई में उतरता था, वो अचानक सिर्फ स्कोर और आंकड़ों की दुनिया में चला जाता है। ऐसा क्यों?
यही यही तो इस उपन्यास का सबसे बड़ा सवाल है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे, मतलब, जिंदगी की अनिश्चितता से डर लगता है। खेलों में सब कुछ साफ होता है, एक टीम जीतती है, एक हारती है, नतीजा तय होता है। वो भावनाओं का धुंधलका नहीं होता जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ दी।
तो उसने अपने लिए एक नया फलसफा गढ़ लिया है।
हाँ बिल्कुल, जिसे वो स्वप्नलता या ड्रीमनेस कहता है।
स्वप्नलता, ये सुनने में तो बहुत गहरा शब्द लगता है, पर इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है दुनिया से एक तरह का वैराग्य। उसने तय कर लिया है कि वो अब चीजों को गहराई से महसूस नहीं करेगा,
बस एक दर्शक की तरह देखेगा।
हाँ, बस निरीक्षण करेगा। ये दुख से बचने का उसका एक तरीका है, एक भावनात्मक कवच।
लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा कवच आपको जिंदा रख सकता है?
या धीरे धीरे आपका दम ही घोंट देता है?
और इसी सवाल की पड़ताल ये उपन्यास एक ईस्टर वीकेंड के 3 दिनों में करता है।
हाँ, कहानी गुड फ्राइडे से शुरू होती है। फ्रैंक अपनी नई प्रेमिका विकी के साथ डिट्रॉइट जाने की तैयारी कर रहा है।
लेकिन जाने से पहले उसे एक इंटरव्यू करना है।
जी, वो हर्ब वेलेगर नाम के एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी का इंटरव्यू लेने जाता है जो अब पैराप्लेजिया के वजह से व्हीलचेयर पर है।
और ये मुलाकात कैसी रहती है?
हर्ब जिंदगी से बहुत नाराज है, कड़वाहट से भरा हुआ है, और उसकी उस सच्ची नंगी पीड़ा के सामने फ्रैंक का सारा फलसफा, उसकी स्वप्निलता
खोखली लगने लगती है।
बिल्कुल, वो पूरी तरह नाकाम हो जाता है।
तो ये उसके इस कवच पर पहली बड़ी चोट है ना?
हाँ, जब किसी और का असली दर्द सामने आता है तो उसका ये बनावटीपन टिक नहीं पाता।
और ये दरार और बढ़ जाती है जब वो शाम को विकी के साथ होता है।
हाँ, विकी एक जुड़ाव चाहती है, वो भविष्य की बातें करना चाहती है, पर फ्रैंक, वो तो जैसे वहां है ही नहीं, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ।
उन दोनों के बीच एक शीशे की दीवार है।
सही कहा, जिसे विकी महसूस तो कर सकती है पर तोड़ नहीं पाती।
और फिर आता है शनिवार, डिट्रॉइट की यात्रा।
और वो यात्रा तो एक पूरी, मतलब, आपदा साबित होती है।
क्या होता है वहाँ?
वो विकी के परिवार से मिलता है और वहाँ खुद को एक बाहरी इंसान की तरह महसूस करता है। वो घुलने मिलने की कोशिश करता है पर हर कोशिश उसे और अकेला कर देती है।
और फिर होटल के कमरे में जो होता है।
हाँ, वहाँ तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। उनके बीच एक बहुत दर्दनाक बहस होती है
और विकी उसे छोड़ देती है।
हाँ, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि फ्रैंक भावनात्मक रूप से उपलब्ध ही नहीं है, वो एक खाली लिफाफे की तरह है, और वहीं उनका रिश्ता खत्म हो जाता है।
तो उसका ये कवच जो उसे दुख से बचाने के लिए था, वही उसे प्यार से भी दूर कर देता है।
बिल्कुल, वो एक दर्द से बचने के लिए खुद को हर तरह की खुशी से भी दूर कर रहा है।
और फिर ईस्टर रविवार को वो अकेला लौटता है।
हाँ, अकेला, और वहां उसकी मुलाकात अपनी पूर्व पत्नी एक्स से होती है। ये मुलाकात ऊपर से तो शांत होती है पर उसके नीचे बहुत कुछ अनकहा रह जाता है।
और जैसे इतना काफी नहीं था, उसे एक और बुरी खबर मिलती है।
जी, उसे पता चलता है कि उसके डिवोर्स्ड मेंस क्लब के एक सदस्य वॉल्टर लकेट ने आत्महत्या कर ली है।
ओह,
वॉल्टर भी फ्रैंक की तरह ही तलाक के दर्द से गुजर रहा था।
तो वॉल्टर की मौत फ्रैंक के लिए एक आईने की तरह होगी, है ना?
हाँ बिल्कुल, वो उसे दिखाती है कि अगर वो अपनी स्वप्निलता से नहीं चिपका रहता तो शायद उसका भी यही अंजाम हो सकता था।
वॉल्टर ने निराशा के आगे हार मान ली,
जबकि फ्रैंक उसी निराशा से लड़ने के लिए एक नाटक कर रहा है।
और ये घटना उसे अंदर तक हिला देती है
बहुत ज्यादा, और उस दिन के अंत में वो कुछ ऐसा करता है जो उसने शायद महीनों से नहीं किया था। वो एक्स को फोन करता है।
उस फोन कॉल में क्या होता है?
कुछ खास नहीं, कोई समाधान नहीं मिलता। बस कुछ पलों के लिए वो दोनों अपने साझा दुख पर, अपने बेटे को खोने के दर्द पर एक साथ चुप हो जाते हैं।
और उस खामोशी में एक तरह का जुड़ाव है।
हाँ, एक दुर्लभ अंतरंग पल।
चलिए थोड़ा फ्रैंक के किरदार को और समझते हैं। वो इतना पेचीदा क्यों है?
क्योंकि वो बहुत असली है। वो अपनी होशियारी को, अपनी बुद्धि को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है ताकि उसे कुछ महसूस ना करना पड़े।
उसकी यात्रा किसी इलाज की नहीं बल्कि समायोजन की है।
सही कहा। वो धीरे धीरे ये स्वीकार करना शुरू करता है कि जिंदगी में एक स्थायित्व काल आता है जहां खुशी और दुख दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है।
आप दुख को मिटा नहीं सकते,
बस उसके साथ जीना सीख सकते हैं।
और इस सीखने में विकी और एक्स जैसे किरदारों की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है।
हाँ, विकी वो भविष्य है जिसे फ्रैंक अपना नहीं पा रहा।
एक सामान्य प्यार भरा जीवन,
और एक्स वो अतीत है जिससे वो भाग रहा है लेकिन भाग भी नहीं सकता।
बिल्कुल। और वॉल्टर लकेट वो खौफनाक भविष्य है जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा है।
इस उपन्यास में कुछ बहुत गहरे विषय हैं। सबसे बड़ा तो दुख और याददाश्त का ही है।
हाँ, ये किताब दुख को एक ऐसी अवस्था मानती है जिससे आप पार नहीं पाते। वो हमेशा आपके साथ रहती है। फ्रैंक के बेटे की याद हर पल उसके साथ है। कभी वो सुकून देती है
और कभी
एक जेल की तरह लगती है। ये किताब मूव ऑन करने वाली सोच पर भी सवाल उठाती है ना?
हाँ, कि शायद जिंदगी की कुछ त्रासदियों से आप कभी मूव ऑन नहीं करते, आप बस बदल जाते हैं।
एक और विषय जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है भाषा की कमी, ये एहसास कि कुछ दर्द शब्दों में नहीं समा सकता।
बिल्कुल, फ्रैंक खुद एक कहानीकार था लेकिन अपने सबसे बड़े दर्द के लिए उसके पास शब्द नहीं है।
शायद इसीलिए वो स्पोर्ट्स लिखने लगा,
क्योंकि टीम ए ने टीम बी को 10-5 से हराया। ये एक साफ सीधी सच्चाई है, इसमें कोई उलझन नहीं है।
और इन सब के बीच ये उपन्यास पुरुषों की पहचान के संकट को भी दिखाता है।
हाँ, फ्रैंक ने पति, पिता, लेखक, अपनी सारी पहचानें खो दी हैं। वो मजबूत दिखना चाहता है पर अंदर से वो टूटा हुआ है।
और ये सारी गहरी बातें हम तक लेखक की अनोखी शैली की वजह से पहुंचती हैं। ये पूरी कहानी फ्रैंक के नजरिए से है।
जी, फर्स्ट पर्सन में, और लेखक ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का इस्तेमाल किया है।
अच्छा, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगी?
जरूर। सोचिए कि आप किसी के दिमाग के अंदर हैं। वो जो भी सोच रहा है, जो याद कर रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो सब कुछ बिना किसी फिल्टर के सीधा आप तक पहुंच रहा है।
उसके विचार एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं,
जैसे असल में हमारे दिमाग में होता है। इस तकनीक से हम सिर्फ फ्रैंक की कहानी नहीं सुनते, हम उसके दिमाग के अंदर रहने लगते हैं।
हम उसकी खामियों को पहचानते हैं लेकिन फिर भी उसके लिए सहानुभूति महसूस करते हैं,
क्योंकि हम उसके दर्द की गहराई को समझ पाते हैं।
तो ये किताब हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, ये नहीं बताती कि दुख से कैसे बाहर निकलें।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये जिंदगी का एक खूबसूरत और दर्दनाक चित्र है।
तो इस कहानी का सार ये हो सकता है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक कर लेना शायद एक मिथक है।
हाँ, शायद असली साहस मूव ऑन करने में नहीं बल्कि अपने टूटे हुए हिस्सों के साथ जीना सीखने में है। ये स्वीकार करने में है कि कुछ घाव कभी नहीं भरते, वो बस आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।